कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जो अभी अभी युद्ध के मैदान से लौट रहा है। उसके कपड़े घुटनों तक गहरे लाल रंग से सने हुए हैं।
ये छवि सुनते ही काफी खौफनाक लगते हैं।
हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत बड़े नरसंहार से वापस आ रहा हो। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है।
वो कौन सा मोड़ है?
वो खून वो दुश्मनों का नहीं है, वो खून उस योद्धा का अपना है। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसी ही विचलित करने वाली लेकिन बेहद शक्तिशाली छवियों पर बात करने वाले हैं।
ये दृश्य जितना डरावना है उतना ही गहरा भी है, और ये हमें सीधे उस विषय के केंद्र में ले जाता है जिस पर हमारे आज के स्रोत आधारित हैं।
बिल्कुल, हम डॉक्टर जॉन ओसवाल्ड द्वारा यशाया की पुस्तक, विशेष रूप से अध्याय 63 से 66 के विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं।
और मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ किसी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं है
जी।
ये असल में ईश्वरीय कृपा और हमारी खुद की मानवीय विफलता के बीच होने वाले उस भयानक टकराव का विश्लेषण है।
तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि जब कृपा और इंसान की जिद आमने सामने होते हैं तो क्या होता है।
इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। डॉक्टर ओसवाल्ड बताते हैं कि यशाया के पहले के अध्यायों में, मतलब अध्याय 40 से 55 में, एक बहुत ही सुकून देने वाली बात कही गई थी।
हाँ, मैंने भी वो पढ़ा है। वहां सारा जोर बिना किसी शर्त के मिलने वाली कृपा पर था, है ना? ऐसा लगता था जैसे सब कुछ मुफ्त है और इंसान को कुछ साबित नहीं करना है।
सही कहा। लेकिन जैसे ही ये कहानी अध्याय 56 से 66 की तरफ बढ़ती है, वो आरामदायक एहसास अचानक से गायब हो जाता है।
और यहीं से ये चेतावनी मिलने लगती है कि हमारा आचरण मायने रखता है। मतलब ऐसा क्यों है कि सिर्फ चुने जाने का टैग किसी को बेहतर इंसान नहीं बना पाता?
इसका जवाब मानव मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी परतों में छिपा है। डॉक्टर ओसवाल्ड यहाँ जो तर्क देते हैं वो ये है कि सिर्फ नियम जान लेने से हमारे अंदर की मौलिक प्रकृति नहीं बदल जाती।
मतलब आप किसी को दुनिया भर के बेहतरीन नियम दे दें, फिर भी वो अंदर से वही रहेगा।
बिल्कुल, नियम तो बस एक आईने की तरह होते हैं। वे सिर्फ ये दिखाते हैं कि आपके चेहरे पर दाग है, लेकिन वो आईना उस दाग को साफ नहीं कर सकता।
अरे ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इंसान के भीतर एक ऐसी गहरी प्रवृत्ति है जो उसे बार बार गलत दिशा में खींचती है।
हाँ, और केवल नैतिक दिशा निर्देशों या उपदेशों से इस प्रवृत्ति को नहीं हराया जा सकता, इसके लिए कुछ और चाहिए।
तो अगर नियम हमें नहीं बदल सकते और हम खुद को इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते, तो फिर इस बुराई से लड़ेगा कौन?
यहीं पर वो छवि वापस आती है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, दिव्य योद्धा या डिवाइन वॉरियर की छवि।
अध्याय 63 की शुरुआत में ये योद्धा एदोम से लौट रहा है, और ये वर्णन इतना आक्रामक है कि ये सच में किसी को भी विचलित कर दे।
हाँ, वहाँ कहा गया है कि उसने एदोम को एक वाइन प्रेस की तरह, यानी जहाँ अंगूरों को कुचला जाता है, वैसे रौंद दिया है।
लेकिन एक मिनट, एदोम तो एक भौगोलिक स्थान था ना, एक देश था, तो क्या ये किसी युद्ध का वर्णन है?
देखिए, ऐतिहासिक रूप से एदोम एक राष्ट्र जरूर था, लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ड स्पष्ट करते हैं कि यहाँ बात इतिहास की नहीं बल्कि रूपक की हो रही है।
मतलब ये कोई शाब्दिक युद्ध नहीं है?
बिल्कुल नहीं। उस समय तक बेबीलोनियाई साम्राज्य एदोम को पहले ही मिट्टी में मिला चुका था, तो जब यहाँ एदोम को कुचलने की बात होती है तो वो पाप का प्रतीक है।
अच्छा, तो एदोम इंसान के भीतर जड़ जमा चुकी उस गहरी बुराई और विरोध का प्रतीक बन गया है।
सही कहा। वो दिव्य योद्धा असल में किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि उस कॉस्मिक बुराई से लड़ रहा है जो इंसानियत को खाए जा रही है।
रुको, अगर वो बुराई को कुचल रहा है, दुश्मनों को रौंद रहा है, तो फिर उसके कपड़ों पर लगा खून उसका अपना कैसे हो सकता है?
यही तो सवाल है।
मेरा मतलब है, ये तो तर्कसंगत नहीं लगता। जब हम किसी वाइन प्रेस में अंगूर कुचलते हैं तो रस अंगूर का निकलता है, कुचलने वाले का नहीं।
यही इस पूरी तस्वीर का सबसे गहरा और विरोधाभासी रहस्य है। बाहरी बुराई को तो तलवार से खत्म किया जा सकता है, लेकिन इंसान के अंदर की बुराई को बाहर से नहीं मारा जा सकता।
तो क्या उस योद्धा को वो सारा पाप खुद अपने ऊपर लेना पड़ता है?
बिल्कुल। डॉक्टर ओसवाल्ड के विश्लेषण का एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यही है। वो पाप की ताकत को नष्ट करने के लिए खुद उस दर्द को सोख लेता है।
ये एक ऐसी जीत है जो दूसरों को मारने से नहीं बल्कि खुद के बलिदान से हासिल की जा रही है। ये मुझे उस दोहरी पहचान की याद दिलाता है।
हाँ, आप पीड़ित सेवक वाली छवि की बात कर रहे हैं।
हाँ, एक तरफ वो पीड़ित सेवक है जो चुपचाप लोगों के दुख सहता है, और दूसरी तरफ ये आक्रामक दिव्य योद्धा है। ये तो बिल्कुल एक सर्जन की तरह हुआ।
एक सर्जन की तरह।
ये उपमा दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए।
मतलब सोचिए कि एक डॉक्टर है जो मरीज से बहुत सहानुभूति रखता है, ठीक वैसे ही जैसे वो पीड़ित सेवक।
हाँ, वो मरीज का दर्द समझता है, लेकिन जब उस मरीज के शरीर में कोई जानलेवा कैंसर पनप रहा हो तो डॉक्टर सिर्फ सहानुभूति जताकर नहीं रुक सकता, उसे एक सर्जन बनना पड़ता है, बेरहम होना पड़ता है।
हाँ, उसे बीमारी को जड़ से काटने के लिए चाकू उठाना ही पड़ता है, वो बीमारी पर कोई दया नहीं दिखाता।
बिल्कुल, वो योद्धा भी हमारे अंदर के पाप रूपी कैंसर के लिए वो बिरहम सर्जन है, उसे मरीज को बचाना है इसलिए वो बीमारी को कुचलता है।
ये इससे समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और अगर हम अध्याय 59 और 63 की तुलना करें तो ये सर्जन वाला पहलू और भी स्पष्ट हो जाता है।
उन दोनों अध्यायों में क्या अंतर है?
अध्याय 59 में जब ईश्वर के न्याय की बात होती है तो वो तीसरे व्यक्ति में है कि ईश्वर ने देखा और उसे बुरा लगा,
लेकिन अध्याय 63 में तो योद्धा खुद बात कर रहा है ना।
हाँ,
प्रथम पुरुष में।
हाँ, वो कहता है मैंने वाइन प्रेस को अकेले रौंदा है। ये बदलाव दिखाता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा पर्यवेक्षक नहीं है।
हाँ, मतलब वो वर्तमान में इसी क्षण उस पाप की सत्ता को तोड़ने के लिए एक सक्रिय युद्ध लड़ रहा है। ये सब सुनकर तो लगता है कि इंसान को बहुत कृतज्ञ होना चाहिए।
होना तो चाहिए, लेकिन जब हम अध्याय 63 के आगे के हिस्से और अध्याय 64 की तरफ बढ़ते हैं तो इंसान का रवैया देखकर सच में हैरानी होती है।
हाँ, मैंने भी गौर किया, ईश्वर बुराई से लड़ रहा है और इंसान क्या कर रहा है, वो अपनी ही गलतियों के लिए ईश्वर पर उंगली उठा रहा है।
ये आरोप प्रत्यारोप का खेल मानव स्वभाव का एक बहुत ही कड़वा सच है। डॉक्टर ओसवाल्ट दिखाते हैं कि लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं,
मतलब वे अतीत के चमत्कारों को याद करते हैं, वे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का जिक्र करते हैं।
बिल्कुल, वे हिसद का जिक्र करते हैं जो ईश्वर की उस अटूट करुणा का प्रतीक है, लेकिन ये आभार बहुत जल्दी एक अजीब तरह की शिकायत में बदल जाता है।
अरे हाँ, वे अचानक से कहते हैं ईश्वर हमारे दिल कठोर क्यों हो गए हैं, हम तुम्हारे रास्तों से क्यों भटक गए हैं,
कर चले गए।
ये किस तरह का तर्क है, ये तो अपनी जिम्मेदारी से बुरी तरह मुकर जाना हुआ।
हाँ, वे मूल रूप से कह रहे हैं कि चूंकि तुमने हमें अकेला छोड़ दिया इसलिए हम बुरे बन गए।
मतलब ये तो बिल्कुल उस छात्र की तरह हो गया जो साल भर मोबाइल पर गेम खेलता रहता है और जब परीक्षा में फेल हो जाता है तो टीचर पर चिल्लाता है।
हाँ, कि मैं फेल हो गया और ये आपकी गलती है।
बिल्कुल, वो कहता है कि आपने मेरे घर आकर मुझे कुर्सी पर बांधकर जबरदस्ती क्यों नहीं पढ़ाया, कोई इंसान इतना आत्ममग्न कैसे हो सकता है।
ये सच में हैरान करने वाला है। डॉक्टर ओसवाल्ड यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प हल्का फुल्का कैल्विनिस्ट विचार का संदर्भ देते हैं।
कैल्विनिस्ट विचार, वो क्या है?
देखिए, कैल्विनिज्म में अक्सर ईश्वरीय संप्रभुता या नियति पर जोर दिया जाता है। यहाँ व्यंग ये है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तो पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं।
हाँ, मतलब वे जो चाहें करना चाहते हैं उन्हें कोई रोके नहीं।
लेकिन जब उस स्वतंत्रता के परिणाम भयानक होने लगते हैं तब वे अचानक चाहते हैं कि ईश्वर आसमान फाड़कर नीचे आए और सब कुछ जादुई रूप से ठीक कर दे।
अरे वाह, मतलब जब तक सब ठीक है तब तक मुझे मेरी मर्जी से जीने दो, और जब सब बिगड़ जाए तो ईश्वर तुमने आकर मुझे रोका क्यों नहीं।
ठीक यही बात, वे चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें बचा ले, लेकिन इसके लिए वे खुद कोई प्रयास नहीं करना चाहते, उनके भीतर कोई सच्चा पश्चाताप नहीं है।
वे बस एक जादुई समाधान चाहते हैं जो उनके अहंकार को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें बचा ले, और ये अहंकार वाली बात हमें अध्याय 65 और 66 के सबसे खतरनाक हिस्से तक ले जाती है।
हाँ, जब इंसान अपनी गलतियों का दोष ईश्वर पर मढ़ देता है और फिर भी समाज में खुद को सबसे पवित्र साबित करना चाहता है।
अध्याय 65 में एक दृश्य है जहाँ लोग दूसरों से कह रहे हैं मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत, मैं बहुत पवित्र हूँ।
और विडंबना देखिए, जो लोग खुद को इतना पवित्र बता रहे हैं डॉक्टर ओसवाल्ड के अनुसार वे असल में कब्रों के बीच बैठ रहे हैं।
और गुप्त स्थानों पर सुअर का मांस खा रहे हैं जो कि उस संस्कृति में परम अशुद्धता का प्रतीक था।
बिल्कुल, वे ऐसे अनुष्ठान कर रहे हैं जो पूरी तरह से अंधविश्वास से जुड़े हैं, और फिर भी उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे खुद को धर्मी मानते हैं।
और ईश्वर की प्रतिक्रिया इस पर बहुत ही कठोर है। ईश्वर कहते हैं कि ये तथाकथित पवित्रता उनकी नाक में एक धुएं की तरह है।
आहा, एक ऐसी बदबू जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इन खोखले कर्मकांडों की तुलना। अध्याय 66 में जो तुलनाएं की गई हैं वे सच में भयानक हैं।
हाँ, डॉक्टर ऑसवाल्ट इस पर बहुत जोर देते हैं। वहां कहा गया है कि अगर नियत सही नहीं है तो एक बैल की बलि देना एक इंसान की हत्या करने के बराबर है।
एक मिनट, बैल की बलि को इंसान की हत्या के बराबर, और अनाज की भेंट चढ़ाना सुअर के खून को चढ़ाने जैसा है।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। वहां ये भी कहा गया है कि मेमने की बलि देना एक कुत्ते की गर्दन तोड़ने जैसा है।
अरे बाप रे, ये तो बहुत ही क्रूर तुलना है। एक धार्मिक अनुष्ठान को एक जानवर के साथ ऐसी क्रूरता के बराबर कैसे रखा जा सकता है?
क्योंकि ईश्वर यहाँ कर्म कांडों के पीछे की नीयत और उस पाखंड पर प्रहार कर रहे हैं। ईश्वर को इन भव्य अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो फिर लोग ये सब करते क्यों हैं?
डॉक्टर ऑसवाल्ड समझाते हैं कि जब इंसान इन कर्मकांडों को करता है तो अक्सर वो ईश्वर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है।
मतलब वो सोचता है कि मैंने ये बड़ी बलि दे दी, अब ईश्वर मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर है।
बिल्कुल, ये एक व्यापारिक लेन देन बन जाता है।
जैसे ईश्वर कोई वेंडिंग मशीन हो, आपने कर्मकांड का सिक्का डाला और मन चाहा आशीर्वाद बाहर आ गया।
हाँ, और जब इस व्यापारिक मानसिकता में अहंकार जुड़ जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मैं बाकियों से श्रेष्ठ हूँ, तो ये ईश्वरीय दृष्टि में अपराध बन जाता है।
इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि बिना नम्रता के किया गया सबसे पवित्र कार्य भी हत्या या कुत्ते की गर्दन तोड़ने जैसा भयानक है।
सही कहा, ईश्वर को कर्म कांड नहीं बल्कि एक नम्र और पश्चातापी आत्मा चाहिए जो अपनी कमियों को स्वीकार कर सके।
ये सब सुनकर तो हम सबके अंदर एक गहरी निराशा छा सकती है। मतलब इंसान अंदर से टूट चुका है, वो ईश्वर को दोष देता है और धर्म का पालन भी पाखंड बन जाता है।
ये निराशा स्वाभाविक है।
ऐसे में तो लगता है जैसे इस दुनिया में कभी न्याय हो ही नहीं सकता। अगर इंसान इतना भ्रष्ट है तो अच्छे लोगों के साथ हमेशा अन्याय ही होगा।
और यहीं पर अध्याय 65 में एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा सामने आती है, एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की आवश्यकता।
हाँ, तो क्या यह नया निर्माण सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पुरानी दुनिया खराब हो गई है?
ये सिर्फ एक विचार नहीं है। डॉक्टर ऑसवाल्ड स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर के न्याय को तार्किक रूप से स्थापित करने के लिए ये एक परम आवश्यकता है।
आवश्यकता कैसे? मतलब इसके बिना काम क्यों नहीं चल सकता?
देखिए, अगर हम दुनिया को देखें तो हम अक्सर पाते हैं कि चीजें उस तरह से काम नहीं करती जैसा उन्हें करना चाहिए।
हाँ, ये तो है।
पुराने नियम में अक्सर ये माना जाता था कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको इसी जीवन में सुख मिलेगा और बुरे हैं तो सजा।
लेकिन हम सब जानते हैं कि हकीकत में ऐसा नहीं होता। हम हर दिन देखते हैं कि बहुत से ईमानदार लोग जीवन भर गरीबी या अन्याय झेलते हैं।
और कई भ्रष्ट लोग सत्ता और सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं।
बिल्कुल, तो अगर न्याय केवल इसी दुनिया तक सीमित है तो फिर न्याय तो कभी पूरा हुआ ही नहीं।
यही वो बिंदु है। अगर ईश्वर ने पूर्ण न्याय का वादा किया है और अगर ये जीवन ही सब कुछ है तो वो वादा झूठा साबित होता है।
हाँ, अब मैं समझा। इसलिए एक नए स्वर्ग और नए पृथ्वी की अवधारणा सिर्फ कुछ झूठी सांत्वना नहीं है।
हाँ, ये इस बात की गारंटी है कि अंतिम न्याय सुरक्षित है। बुराई का परिणाम विनाश ही होगा और धार्मिकता का परिणाम आशीर्वाद।
यह विचार आज के समय में भी बहुत ताकतवर है। जब हम चारों ओर अन्याय देखते हैं तो हार मान लेना बहुत आसान लगता है।
लेकिन यह आने वाले न्याय की उम्मीद ही इंसान को बिना स्वार्थ के ईमानदारी से जीने की प्रेरणा देती है।
सही कहा। उसे पता है कि भले ही इस दुनिया की अंधी दौड़ में उसे पीछे छोड़ दिया जाए, लेकिन अंतिम हिसाब किताब अभी बाकी है।
और इस नए निर्माण के बारे में एक और बात है जिसने उस समय के समाज की नींव हिला दी होगी। डॉक्टर ऑसवाल्ट इसका खास जिक्र करते हैं।
वह क्या है?
अध्याय 66 में बताया गया है कि इस नए राज्य में अन्य राष्ट्रों को, जिन्हें जेंटाइल्स कहा जाता था, उन्हें भी शामिल किया जाएगा।
अरे हाँ, वहाँ तर्शीश, पुल और लूद जैसे राष्ट्रों का जिक्र है, लेकिन बात सिर्फ शामिल करने की नहीं थी, है ना?
बिल्कुल नहीं, बात उन्हें पुजारियों के रूप में चुनने की थी। यह उस समय के हिसाब से अकल्पनीय था।
मतलब जो लोग खुद को जन्म से चुनावा मानते थे, जिनका पूरा अहंकार इसी बात पर टिका था कि वे पवित्र हैं और बाकी दुनिया अशुद्ध है।
हाँ, उनसे ये कहा जा रहा था कि ये बाहरी लोग जिन्हें तुम हिकारत से देखते हो वे भी पवित्र स्थानों में सेवा करेंगे।
ये तो उनके धार्मिक अहंकार पर सीधा प्रहार था। ये साफ बताता है कि ईश्वर का नया राज्य वंशावली या जन्म के आधार पर नहीं बनेगा।
सही कहा, ये पूरी तरह से हृदय के नम्रता के आधार पर बनेगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अगर वो पश्चातापी है तो दरवाजे खुले।
और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत तक ले जाती है। अध्याय 66 का अंत, जो कि यशाया की पूरी पुस्तक का निष्कर्ष है।
हाँ, ये अंत एक बहुत ही स्पष्ट और दो टूक चुनाव के साथ होता है। डॉक्टर ओसवाथ इसे बहुत गहराई से समझाते हैं।
ये चुनाव वैसा ही है जैसा अध्याय 1 में रखा गया था, है ना?
हाँ, एक तरफ ईश्वर सभी राष्ट्रों को साथ आकर उस नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में अपनी महिमा की पूजा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।
ये पूर्णता और शांति का दृश्य है।
और दूसरी तरफ उन विद्रोहियों का अंत दिखाया गया है जो अंत तक अपने अहंकार और दिखावे पर अड़े रहे। उनके लिए एक ऐसी आग की बात की गई है जो कभी नहीं बुझती।
तो ये सब कुछ एक ही जगह लाके खड़ा कर देता है। इंसान की अपनी चॉइस, बाहरी नियम हमें नहीं बदल सकते और हम अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते।
बिल्कुल, ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है कि हम अहंकार को चुनते हैं या नम्रता को। इस पूरे अध्ययन का सबसे बड़ा सबक यही है।
हम अक्सर समस्याओं का बाहरी समाधान खोजते हैं, कर्मकांड करते हैं, नियम बनाते हैं या खुद को परिस्थितियों का शिकार मान लेते हैं।
हाँ, लेकिन असली बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम उस आंतरिक अंधकार को स्वीकार करते हैं और उस दिव्य योद्धा को भीतर काम करने देते हैं।
ये सच में एक ऐसा विषय है जो सतह के बहुत नीचे जाकर हमारे वास्तविक इरादों को चुनौती देता है।
और ये सिर्फ प्राचीन यशाया की बात नहीं है, ये मानवीय मनोविज्ञान का एक शाश्वत सच है।
बिल्कुल, आज हमने ये समझा कि बिना सही नियत के किया गया कोई भी धार्मिक या नैतिक कार्य कितना खोखला और यहां तक कि भयानक हो सकता है।
सही कहा, बाहरी दिखावा आसान है लेकिन आंतरिक सच्चाई ही असली पैमाना है।
और अब इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जरा सोचिए।
वो सवाल क्या है?
यदि बिना सही नियत और आंतरिक नम्रता के किया गया सबसे पवित्र कार्य भी, सबसे बड़ा अनुष्ठान भी कुत्ते की गर्दन तोड़ने जैसा भयानक और निरर्थक हो सकता है।
हाँ, डॉक्टर ओसवाल्ट ने इसे बहुत स्पष्ट किया है।
तो आज के इस आधुनिक समाज में हम जो भी तथाकथित सेल्फ इम्प्रूवमेंट या माइंडफुलनेस के काम करते हैं, दुनिया के सामने खुद को एक बेहतर इंसान दिखाने के लिए,
ये तो हम सब कहीं ना कहीं करते ही हैं,
तो उनमें से कितने काम वास्तव में सिर्फ हमारे अहंकार को ही और ज्यादा पुख्ता करने वाले आधुनिक और खोखले कर्मकांड मात्र है।